विश्व दर्पण।
श्रोताओं, विश्व दर्पण लेकर सैयद मिसम हाजिर है। आज हम मध्यपुर के बारे में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की समीक्षा करेंगे। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव कई मानी में एकदम अलग रहा है, जहां एक ओर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के ईमेल प्रकरण की जांच का भूत चुनाव से ठीक पहले एफबीआई ने बोतल से निकालकर उनका खेल बिगाड़ दिया, वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार और नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयानों और वादों के लिए विरोधियों के निशाने पर रहे। हालांकि इस चुनाव में ट्रंप ने बाजी मार ली है, लेकिन उनकी जीत के जश्न के रंग में उस समय भंग पड़ गया जब लाखों लोग उनके विरोध में सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने ट्रंप को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। किसी भी चुनाव में जीत और हार के लिए कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि विभिन्न कारण मिलकर चुनाव का नतीजा तय करते हैं। हालांकि इन कारणों में से कोई एक या दो कारण प्रमुख होते हैं जो चुनाव की दिशा का निर्धारण करते हैं। क्लिंटन की हार और ट्रंप की जीत भी इस नियम से अछूती नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप की जीत में उनकी घरेलू नीति और वादों ने अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने जहां घरेलू मुद्दों पर खुलकर बात की, वहीं विदेश नीति पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा। मध्यपूर्व में जारी संकट, विशेष रूप से सीरिया के बारे में, जहां उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों से हटकर स्टैंड लेने की बात कही है, वहीं फिलिस्तीन के मुद्दे पर अधिक तीखे तेवर भी दिखाए हैं। मध्यपूर्व में अमरीका और उसके क्षेत्रीय समर्थक देश जैसे कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की बड़े पैमाने पर आतंकवादी गुटों, खास तौर से दाइश का समर्थन करते रहे हैं और सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद को सत्ता से हटाने से कम पर किसी तरह से तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान बशार असद को नापसंद करार देते हुए ये भी कहा था कि उनके लिए दाइश के खिलाफ लड़ाई और उसे नष्ट करना बशार असद के विरोध से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव जीतने के बाद भी अपने पहले इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश के खिलाफ लड़ाई में सीरियाई सरकार, ईरान और रूस की भूमिका को अहम करार दिया। यहाँ ये सवाल उठता है कि अमरीकी राष्ट्रपति विदेश नीति को बदलने में कितना प्रभावी हो सकता है और क्या उसके पास इस काम के लिए पर्याप्त शक्ति है। भारत में मध्यपूर्व के मामलों के जानकार सौरभ कुमार शाही इन सवालों के जवाब में कहते हैं,
देखिए ये सोच लेना कि अमेरिका का सदर जो है उसके पास इतनी अकेले में पावर होती है कि वो एक फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज कर दे, ये गलत सोचना होगा। क्योंकि आपने पास्ट में भी देखा है कि अमेरिका एक मुल्क नहीं है, वो एक कॉरपोरेशन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंस की जो एक डीप स्टेट है, उस वो डीप स्टेट उस मुल्क को चलाती है। और जहाँ तक उस डीप स्टेट का सवाल है तो वो डीप स्टेट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी वो सारे कॉरपोरेशंस जो प्रॉफिट करते हैं वॉर से वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अगर देख लें तो वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियाँ जिनका काम है हथियार बेचना, और अगर इंटेलिजेंस अपरेटस को देखें तो वो भी अभी भी उसी तरह से एक्ट कर रही हैं। तो फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि कई दफ़ा एक जो एक टैक्टिकल मैन्यूवर्स होते हैं उसका डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं सदर के पास होता है। अगर आप देखें कि हिलरी क्लिंटन ने क्यों इस्तीफा दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट से, तो उसके पीछे एक यही राज है कि हिलरी क्लिंटन ने जिस लेवल पे लीबिया में इंटरवेंशन की थी उसी लेवल तक इंटरवेंशन को ले जाना चाहती थी सीरिया में भी, और वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह यहाँ पे एक नो फ्लाई जोन जो है वो उसको लागू कर दिया जाए। और शायद बराक ओबामा जो है वो यहाँ वहाँ आतंकवादियों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे स्टेक को नहीं ले जाना चाहते थे कि जहाँ पे वो एक नो फ्लाई जोन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और वो ये वॉर जो है वो सिर्फ सीरिया में महदूद ना रह के कहीं ना कहीं रसिया के साथ भी ये वॉर जो है कन्वर्ट हो जाए। तो एक छोटी सी वहाँ पे एक लाइन जो है वो बराक ओबामा ने ड्रॉ की है। अगर हिलरी क्लिंटन जीत के आती तो मैं आपको अश्योर करता हूँ 100% कि वो ये कोशिश अपने तरफ से करती कि कहीं ना कहीं ये नो फ्लाई जोन जो है वो क्रिएट हो जाए, और नो फ्लाई जोन क्रिएट हो और इसी के बिना पे कहीं ना कहीं रसिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो। ट्रंप का जहां तक सवाल है तो ट्रंप ने अपनी सारी फोकस जो है प्रायोरिटी जो है वो इंटरनल पॉलिसी को दी है, इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी को दी है। इसीलिए कम से कम शॉर्ट टर्म में ये तवक्को रखी जा सकती है कि देखिए, मुझे ये तवक्को उनसे नहीं है कि वो आतंकवादी संगठनों को इमदाद देना बंद कर देंगे। वो तो जैसे अमेरिका का चलता रहा वैसे चलता रहेगा चाहे कोई प्रेसिडेंट हो जाए, लेकिन इतनी तवक्को मुझे जरूर है उनसे कि जिस तरह की नो फ्लाई जोन की बात हिलेरी क्लिंटन के आने पे हो रही थी, वो नो फ्लाई जोन जो है वो कम से कम हमारे अब रीच से बाहर है, यानी अब हम उसको नहीं देखेंगे, कम से कम अगले 6-7 महीने तो हमें वो नजर नहीं आने वाला है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी रिलीफ मुझे लगता है कि दुनिया के लिए है। अगर आप स्टेटमेंट देखें जो भी सीरिया के आतंकवादी संगठन हैं, आर आर एस एम का देख लें या जबात अल नुसरा का स्टेटमेंट देख लें, तो आपको लग जाएगा कि हिलरी क्लिंटन के हार से उनसे ज़्यादा दुखी जो है वो शायद हिलरी क्लिंटन भी नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम शॉर्ट टर्म में टेक्टिकल मायने में कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे मिलेगी, लेकिन हाँ जहाँ तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात है तो वही जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डीप स्टेट उनकी पॉलिसी बनाती रही है इतने सालों से अमेरिका की, वो आगे भी बनाएगी और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ राहत की उम्मीद जो है वो मुझे वहां पे नजर आ रही है कम से कम।
फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर ट्रंप क्या रुख अपना सकते हैं, इस बारे में सुनते हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आगा मसूद के विचार।
जहाँ तक सऊनी ताकत का ताल्लुक है या सऊनी हुकूमत का ताल्लुक है वो तो एक जैसी होती है, लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये कभी भी सियासतदान नहीं रहे, ये डेवलपर हैं और बहुत कंफ्यूज्ड आदमी हैं। आपको मालूम है कि सारे इलेक्शन के दौरान उन्होंने कई ऐसे जुमले कहे, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा रिग्ड है, मीडिया बड़ा रिग्ड है, इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो मैं उसके नतीजों को नहीं मालूंगा, तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज पर्सन। अच्छा, अब उनको उनका जो इसराइल के सिलसिले में जो उनके ख्यालात हैं वो मैं आपकी खिदमत अर्ज करना चाहता हूँ। पहली दफ़ा तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसमें न्यूट्रल रहूंगा, मतलब आई बी द न्यूट्रल, आई बी नॉट प्लेइंग एनी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब लेट द पीपल पैलेस्टीनियंस एंड इजरायली शुड डिसाइड देमसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात उसने अभी हाल ही में कही कि मैं इनको जो गजा में और वेस्ट बैंक में जो फलस्तीनी आबाद हैं और वो तकरीबन 5 मिलियन से भी ज्यादा हैं, उनको मैं पोर्टो रिको में आबाद कर दूंगा, और ये जो इलाका है पोर्टो रिको का जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं उनका जो रकबा है वो वेस्ट बैंक से और गजा से बहुत बड़ा है, और उनको मैं सारी सहूलतें मैं पेश करूंगा। दूसरा ये, तीसरा उन्होंने ये कहा कि मैं ये समझता हूँ कि नेथन हाउ जो हैं वो जो 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 पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं उस पॉलिसी की मैं मुकम्मल हिमायत करता हूँ, और आपको मालूम है सितंबर में उन्होंने मुलाकात भी की थी और उन्होंने उनको यकीन दिलाया था कि हमारा जो तरीक़ेकार होगा वो ये होगा कि हम इसराइल जो कि इस पूरे खत्ते में एक बकौल उनके कि जमहूरियत की अलामत है हम उसको ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। फिर उसने चौथा जुमला कहा, उसने कहा कि मैं ये जो यरूशलम को जो है वो उनका दारुल हुकूमत बनाऊंगा, तेल अवीव की जगह यरूशलम को। तो आप मुझे बताइए कि एक आदमी जो अपना पैंतरा बदल रहा है, जिसके पास कोई बुनियादी फहम नहीं है सियासत का, मशरक वस्ता का, वो एक डेवलपर आदमी है तो वो इस किस्म की बातें कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अभी हाल ही इलेक्शन से पहले मैं अमेरिका में मौजूद था और मैंने इनकी तकरीर भी सुनी डेट्रॉइट में, जहाँ पर ज़्यादातर काले और सियाफाम लोग रहते हैं, तो उनमें से सारे लोग जो उस वक्त खड़े हुए थे मुझसे कहने लगे कि ये रेसिस्ट है, ये नस्ल प्रस्त आदमी है और ये बहुत खतरनाक है सबके लिए। तो यही वजह है कि आपने देखे कि मुसलमानों के सिलसिले में उसका क्या रवैया था, इमिग्रेंट के सिलसिले में क्या रवैया था। लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ कि जो तेल अवीव के दानिश्वर हैं उन्होंने इस बात की बड़ी सख्त तरीन मजम्मत की है, और न्यूयॉर्क टाइम में, वाशिंगटन पोस्ट में ऐसे मजामीन भी आए हैं कि मुसलमानों के सिलसिले में उसने जो कहा है कि मैं उनके दरवाजे बंद कर दूंगा, वो अमेरिका में आ नहीं सकते, उन्होंने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। और उन्होंने अपने कॉलम में ये भी लिखा कि हमें वो दिन याद है कि जब नाजियों ने हमको बेदखल किया और हमको कंसंट्रेशन कैंप में हमारे हजारों लोगों को मारा, तो उन्होंने कहा कि हम उस दिन को नहीं भूले हैं कि जहां मैं यूरोप के अलावा मुसलमान के बाद ममालिक में हम आबाद हुए, उसमें ईरान का भी नाम था। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये एक बड़ा कंफ्यूज आदमी है, लेकिन इनकी पॉलिसी, जैसे आपने खुद अपने तारुफ में फरमाया था कि इनकी पॉलिसी इसराइल के सिलसिले में वही होगी चाहे वो डेमोक्रेट हों चाहे वो रिपब्लिकन हों।
क्या ट्रंप सीरिया संकट को लेकर अमेरिकी नीतियों में कोई बदलाव लाएंगे? सौरभ कुमार शाही।
मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं और शायद उस एग्जांपल से ये बात जो है थोड़ी क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल ये है कि अगर आप नॉर्दर्न सीरिया को देखें जी, खासकर आप अलेप्पो और इदलिब प्रोविंस को देखें जी, तो वहां आतंकवादियों की दो गिरोह आपको नजर आएगी। एक ऐसी गिरोह है जिसका समर्थन अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट कर रही है
जी,
यानी जो कि प्रेसिडेंट के डायरेक्ट अंडर होता है, और दूसरी गिरोह है जिसका समर्थन वहां की पेंटागन कर रही है, यानी जो CIA के यानी उसके मिलिट्री विंग के अंतर्गत है। और ऐसे भी वाकये इदलिब में और हसाका प्रोविंस में और अलेपो में हुए हैं जहां पे कि स्टेट डिपार्टमेंट सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप ने पेंटागन सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप पे अटैक किया है, यानी इंटरनल फाइट में, और पेंटागन सपोर्टेड ग्रुप ने स्टेट डिपार्टमेंट सपोर्टेड ग्रुप पे अटैक किया। ये भी वहां पे एक मजाक चल रहा है। देखिए ये इंटरनल चीज मैं आपको बता रहा हूं
जी।
आपको पता है मैं कई दफा गया हूं, मैंने कवरेज की, अभी भी एक महीना पहले मैं वहां रह के आया हूं, कम से कम एक महीने। तो यहां पे ये यानी इनके सपोर्टेड ग्रुप भी आपस में एक दूसरे पे अटैक करते हैं। अब एज ए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट समर्थित जो ग्रुप है उनके ऊपर है
जी।
तो बहुत से बहुत वो ये कर सकते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट सपोर्टेड जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको, यानी कि उनका फंड विड्रॉ कर लें या उनके जो हथियार भेजते हैं वो विड्रॉ कर लें। लेकिन फिर भी CIA और पेंटागन सपोर्टेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी मदद करना या उनसे मदद छीनना इनके हाथ में नहीं है। वो डीप स्टेट, जिसकी बात मैंने पहले इससे पहले वाले सवाल में की कि एक डीप स्टेट है जो अमेरिका को कंट्रोल करता है, उसके हाथ में है। अब ये डीप स्टेट इनसे छीनता है ये पावर या नहीं छीनता है, इनसे सपोर्ट छीनता है या नहीं छीनता है, ये कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि ये नहीं छीनेगा। लेकिन अगर ये भी होता है कि कम से कम स्टेट डिपार्टमेंट सपोर्टेड ग्रुप से भी इमदाद जो है वापस ले ली जाती है तो भी बहुत राहत की बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑफेंसिव पे बिना किसी मदद के, जिस तरह से ऑफेंसिव पे अभी जो एक अलायंस यहाँ पे सीरिया, हिजबुल्ला, ईरान और रशिया का जो अलायंस है, वो जिस तरह से हर दिन एक न एक गांव और शहर जो है वो जीतते जा रहे हैं अलेपो में और बाकी दूसरे प्रोविंस में, तो मुझे लगता है कि अगर वो तटस्थ भी रहेंगे, यानी पुरानी पॉलिसी में कोई इजाफा ना भी करें, तो मुझे ये लगता है कि ये अब कुछ महीनों की बात है कि अलेपो पे कंप्लीट जो है वो कब्जा हो जाएगा हुकूमत का। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से मुझ में थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म है। लेकिन पॉलिसी फ्रंट पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने आपको बताया कि एक लिमिटेड ऑप्टिमिज्म है। मैं अभी कम से कम 2 महीने इंतजार करूंगा और देखूंगा कि किस तरह जो है ये सारा जो है गेम वो ओपन होता है, फिर उसके बाद मैं आपको कॉन्फिडेंस से ये कह पाऊंगा कि इसमें कोई चेंजेस पॉजिटिव आएंगे या नहीं आएंगे।
ट्रंप शासन के दौर में अमरीकी विदेश नीति को लेकर जहां कुछ विशेषज्ञ निराश हैं और उनका मानना है कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद क्षेत्रीय स्थिति और जटिल हो सकती है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ इस संबंध में सीमित तौर पर आशावादी हैं। उनका कहना है कि मध्य पूर्व और विश्व में बदलती हुई परिस्थितियों में अमरीका को भी अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा। अमरीका डूबते हुए जहाज पर सवार नहीं रह सकता और उसे विश्व और क्षेत्र में नए साथी और सहयोगी तलाश करना होंगे।